नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान काम्यक वन में आए, पांडवों से मिले। भगवान ने क्रोध में आकर कहा, मैं अपनी सेना लेकर हस्तिनापुर पर चढ़ाई करूं, अर्जुन ने कहा, महाराज आपका इस प्रकार क्रोध करना उचित नहीं होगा। भगवान बड़े खुश हुए कि अर्जुन, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था, मैं हूं वो तुम हो वो मैं हूं, मेरा है वो तुम्हारा है, तुम्हारा है वो मेरा है। फिर भगवान ने कहा कि मैं वहां नहीं था इसलिए आप लोग जुआ खेल लिए, मैं वहां होता तो न तो मैं द्यूत क्रीड़ा होने देता और युधिष्ठिर में आपका हाथ पकड़ लेता, जुआ नहीं खेलने देता। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज आप नहीं थे, कहां थे आप, द्वारिका में नहीं था मैं। सर्वव्यापक भगवान कहते हैं मैं द्वारिका में नहीं था, मैं शाल्लु से लड़ने के लिए चला गया था। फिर भगवान वहां से विदा हो गए। ये इतनी कथा कल चली, आगे सुनिए। कल आपने ये भी सुना कि द्रौपदी का भगवान में कितना अपनापन। पांडवों को जो बात कभी नहीं कही वो द्रौपदी ने कृष्ण के सामने सुनाई, धिकार है तुमको। और भाइयों ने बड़े प्रेम से द्रौपदी का उलाना सुना। द्रौपदी ने चार कारण बताए, कृष्ण मैं तुम्हारा। देखो आश्चर्य की बात है, द्रौपदी ने भगवान से ये नहीं कहा कि आपने मेरी कैसी रक्षा की, भरी सभा में मेरी लाज जा रही थी। उल्टा भगवान को उलाना दिया गया, क्यों उन्हें दिया ये, मैं तुम्हारी हूं और मेरी ये दशा। चार कारण है, चार कारण। मेरी रक्षा होनी चाहिए थी। एक तो मैं तुम्हारी संबंधी हूं, क्योंकि पांडव आपके बुआ के बेटे भाई हैं, तो मैं भी आपकी संबंधी हूं। दूसरा, मेरा जन्म अग्नि के कुंड से पै हुआ है, तो मेरा भी जन्म दिव्य है, जैसे आपका जन्म दिव्य है। तीसरा, मैं आपकी सच्ची श्रद्धा रखने वाली प्रेमिका हूं। और चौथा, आप पर मेरा अधिकार है। भगवान ने किसी प्रकार से चारों में से कहीं नहीं कहा कि तेरे में कोई कमी है। भगवान ने भी यह नहीं कहा कि देख तूने मुझे पुकारा और मैंने तेरे कहीं सभा के अंदर कोई अपमान होने दिया क्या। भगवान ने नहीं कहा, यही अतिशय प्रेम की बातें होती हैं। चले गए। वैशंपायन जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने अपने स्थान के लिए रवाना हो गए, तब प्रजापतियों के समान तेजस्वी पांडवों ने वेद वेदांग वेत्ता ब्राह्मणों को सोने की मोहरें, वस्त्र और गौवे देकर रथ पर सवार हो अगले वन के लिए प्रस्थान किया। इंद्रसेन सुभद्रा की दाइयों दासियों और वस्त्राभूषणों को लेकर 20 सैनिकों के संरक्षण में रथ पर सवार होकर द्वारिका के लिए रवाना हुआ। उस समय मनस्वी नागरिक धर्मराज युधिष्ठिर के पास आकर उनके बाएं ओर खड़े हो गए। उनमें से कुछ मुख्य मुख्य ब्राह्मण भी थे, बड़ी प्रसन्नता के साथ धर्मराज से बातें करने लगे। पांडवगण झुंड के झुंड प्रजा को आया देखकर खड़े हो गए, उनसे बात करने लगे। उस समय प्रजा और राजा दोनों ही आपस में पिता पुत्र के समान व्यवहार कर रहे थे। प्रजा कहने लगी, हे महाराज, आप हम लोगों को अनाथ करके क्यों जा रहे हैं? कुरुवंशियों में आप श्रेष्ठ हैं, हमारे स्वामी हैं, आप इस देश तथा हम नागरिकों को छोड़कर मत जाइए। क्या कभी पिता अपने संतान को इस प्रकार अनाथ कर सकता है? क्रूर बुद्धि दुर्योधन, शकुनी और कर्ण को धिक्कार है जिन्होंने आप जैसे धर्मात्मा महापुरुष को कपट द्यूत के द्वारा छल कर दुखी करना चाहा है। आप अपने बसाए हुए कैलाश के समान चमकीले इंद्रप्रस्थ को छोड़कर कहां जा रहे हैं? आप हम लोगों को बतलाते भी नहीं कि हम कहां हैं। आपकी वो मैदानों की बनाई हुई सभा ऐसे ही छोड़ रहे हैं। अर्जुन ने सारी प्रजा से ऊंचे स्वर में कहा, उपस्थित नागरिकों, धर्मराज वन में निवास करने के बाद वह सभा और शत्रुओं की कीर्ति दोनों ही छीन लेंगे। तुम लोग अपने धर्म के अनुसार सत्पुरुषों की सेवा करो, उन्हें प्रसन्न करो, इससे आगे चलकर हमारा काम बन जाएगा। अर्जुन की बात सुनकर सब लोगों ने वैसा ही किया और वे अपने अपने घर की यात्रा के लिए चल पड़े। प्रजा के चले जाने पर सत्य प्रतिज्ञ धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, देखो भाइयों, अब हमें 12 बरस तक निर्जन वन में रहना है, इसलिए इस जंगल में जहां फूल फल अधिक हो, जो रमणीय हो, सुखदायक हो, जहां ऋषियों के पवित्र आश्रम हो, वहां प्रदेश ढूंढना चाहिए ताकि फल फूल से निर्वाह हो और ऋषि मुनियों से हमको ज्ञान की प्राप्ति हो। अर्जुन ने धर्मराज का गुरु के समान सम्मान करते हुए कहा, हे महाराज, आपने बड़े बड़े ऋषि मुनि और महापुरुषों की सेवा की है, मनुष्य लोक की कोई भी वस्तु आपके लिए अज्ञात नहीं है, इसलिए आपकी कहां चलने की इच्छा हो वो बताइए। भाई जी, अब जो वन पड़ेगा उसका नाम द्वैत वन है। उस द्वैत वन में जल से भरे हुए सरोवर तो है ही, रंग बिरंगे फूल भी उसमें खिल रहे हैं, बड़े आवश्यक फल भी वहां हैं, पक्षियों के कलरव से उस सरोवर परिपूर्ण है। मुझे इस वन में रहना अच्छा लगता है, परंतु आपकी अनुमति हो तभी अच्छा है, नहीं तो कोई अच्छा नहीं है, आज्ञा दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, यही मैं चाहता हूं, आओ हम लोग द्वैत वन में चलते हैं। निश्चय हो जाने पर अग्निहोत्री, सन्यासी, स्वाध्यायशील भिक्षुक, वानप्रस्थ, तपस्वी, व्रती, महात्मा, ब्राह्मणों के साथ पांडवों ने द्वैत वन में प्रवेश किया। वहां धर्मात्मा, तपस्वी एवं पवित्र स्वभाव वाले आश्रमवासी धर्मराज के सामने आए। धर्मराज ने यथायोग्य सत्कार किया। तदनंतर एक फूलों से लदे कदंब वृक्ष की छाया में बैठ गए। भीमसेन, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनके सेवकों ने रथों से नीचे उतरकर घोड़े खोल दिए और सब धर्मराज के पास आकर बैठ गए। वहां रहकर धर्मराज समस्त अतिथि अभ्यागत ऋषि मुनि ब्राह्मणों को कंदमूल फल से तृप्त करने लगे। वहां पर बड़ी बड़ी इष्टियां माने यज्ञ श्राद्ध कर्म शांतिक पौष्टिक क्रियाएं धौम्य ऋषि के अनुसार होती रही। पांडव इंद्रप्रस्थ का राज्य छोड़कर द्वैत वन के अंदर बड़े आनंद से रह रहे थे। इन्हीं दिनों परम तेजस्वी महामुनि मार्कंडेय पांडवों के आश्रम पर आए। युधिष्ठिर आदि सभी ने देवता ऋषि आदियों से पूजनीय मार्कंडेय ऋषि का स्वागत किया। मार्कंडेय जी वनवासी पांडव और द्रौपदी को देखकर मुस्कुराने लगे। युधिष्ठिर धर्मराज ने पूछा, हे माननीय, अन्य सभी तपस्वी मुझे इस दिशा में देखकर संकोच के मारे बोल नहीं पाते और आप मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? क्योंकि बड़े आदमियों की कोई भी क्रिया निरर्थक नहीं होती है, उनका देखना और मुस्कुराना कोई विशेष अर्थ रखता है। मार्कंडेय जी ने कहा, धर्मराज, मैं तुम्हें इस दशा में देखकर प्रसन्न थोड़ा ही हूं, मुस्कुरा रहा हूं, मुझे किसी बात का घमंड नहीं है। तुम लोगों को इस दशा में देखकर मुझे सत्यनिष्ठ दशरथ नंदन भगवान रामचंद्र की स्मृति हो आई। उन्होंने पिता की आज्ञा से एकमात्र धनुष लेकर सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास किया। मैंने उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर विचरते समय देखा था। भगवान रामचंद्र इंद्र से भी बलवान, यम को भी दंड देने की शक्ति रखने वाले महामनस्वी परम पवित्र निर्दोष थे, फिर भी उन्होंने पिता की आज्ञा से वनवास स्वीकार करके धर्म का पालन किया। धर्मराज, यद्यपि उन्हें संग्राम में कोई भी जीत नहीं सकता था, फिर भी उन्होंने राजोचित भोगों का त्याग करके वनवास किया। इससे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य को मैं बड़ा बलवान हूं ऐसा समझकर अधर्म नहीं करना चाहिए। भारतवर्ष के बड़े बड़े इतिहास प्रसिद्ध राजा नाभाग भगीरथ आदि ने सत्य के बल पर पृथ्वी का शासन किया। धर्मराज, आप वनवासी जरूर हो गए हैं, लेकिन इस समय आपका यश और आपका तेज सारे संसार में उसी प्रकार जगमगा रहा है जैसे सूर्य का तेज त्रिलोकी के अंदर प्रदीप्त होता है। हे धर्मराज, आपकी धार्मिकता सत्यनिष्ठा सद्व्यवहार सारे जगत के प्राणियों से बढ़कर चढ़े बड़े चढ़े हों, यही हम चाहते हैं। तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वनवास की तपस्या कर लेने के बाद अपनी तेजोमयी राजलक्ष्मी को कौरवों से छीन लोगे, मुझे इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं लगता। इसमें किसी प्रकार से कोई तुम्हारी रुकावट नहीं आएगी। मार्कंडेय चले गए। पांडव द्वैत वन में ब्राह्मणों के साथ बड़े प्रेम से रहने लगे। सरोवर के आसपास वेद ध्वनि होती थी। उस समय ऐसा लगता था मानो ब्रह्मलोक यही है। जो वेद के मंत्र बोले जाते थे उसी समय हृदय में बड़ी शांति छा जाती थी। एक दिन दाल्भ्य नामक मुनि ने संध्या के समय युधिष्ठिर से कहा, राजन, देखो इस समय द्वैत वन में आश्रमों में सब ओर तपस्वी ब्राह्मणों की यज्ञाग्नि प्रज्वलित हो रही है। कितना पवित्र ये द्वैत वन जिसमें भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य और अत्रि गोत्र के उत्तम उत्तम तपस्वी ब्राह्मण इकट्ठे हुए हुए हैं और तुम्हारे संरक्षण में सुख सुविधा के साथ साथ अपने धर्म का पालन करते हैं। इसलिए आप लोगों से एक बात कहता हूं, सावधानी से सुनो। जब ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तब इन दोनों की सदा उन्नति और अभिवृद्धि होती है। फिर तो वे अग्नि और पवन के समान हिल मिलकर शत्रुओं के वन में जाकर उनको भस्म कर डालते हैं। बिना ब्राह्मण का आश्रय लिए दीर्घ काल तक सतत प्रयत्न करने पर भी किसी को लोक और परलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में प्रवीण निर्लोभी ब्राह्मण का आश्रय लेकर राजा अपने शत्रुओं का नाश कर सकता है। राजा बलि को ब्राह्मणों की सहायता से कितनी बड़ी उन्नति हुई। ब्राह्मण एक अनुपम दृष्टि है और क्षत्रिय अनुपम बल है। जब नेत्र का बल और बाहुबल इकट्ठे हो जाए तो सारे जगत की समृद्धि हो जाती है। इसलिए विद्वान क्षत्रिय को चाहिए कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की वृद्धि के लिए ब्राह्मणों की सेवा और उनसे ज्ञान प्राप्त करें। तुम तो सदाई ब्राह्मणों के साथ उत्तम व्यवहार करते हो, बड़े तेजस्वी हो। दालवे का अभिनंदन किया, बड़ा सम्मान किया। महात्मा वेदव्यास, नारद, परशुराम, पृथुश्रवा, इंद्रद्युम्न, भालुक, हारित, अग्निवेश्य आदि बहुत से व्रतधारी ब्राह्मणों ने दालभ्य, बक और धर्मराज, युधिष्ठिर का सम्मान किया। एक दिन संध्या के समय वनवासी पांडव को शोकग्रस्त से होकर द्रौपदी के साथ बातचीत कर रहे थे। बातचीत के सिलसिले में द्रौपदी कहने लगी, सचमुच दुर्योधन बड़ा क्रूर और दुरात्मा है। हम लोगों को दुखी देखकर उसको तनिक भी दुख नहीं होता। हरे हरे, उसने हम लोगों को मृगछाला उड़ाकर घोर जंगल में भेज दिया, परंतु उसे रत्ती भर भी पश्चाताप नहीं हुआ। अवश्य ही उसका हृदय फौलाद से बना होगा। एक तो उसने कपट द्यूत में जीता, फिर आप जैसे सरल और धर्मात्मा पुरुष को भरी सभा में कठोर वचन कहे और अपने मित्रों के साथ वो वहां मौज उड़ा रहा है। जब देखती हूं कि आप लोग सुनहरी पलंग छोड़कर कुशकाश के बिछोने पर सो रहे हैं, मुझे हाथी दांत का सिंहासन याद आता है और मैं रो रो करके दिन निकाल रही हूं। आप लोग सोए रहते हो, मैं रोई रहती हूं। बड़े बड़े राजा आप लोगों को घेरे रखते थे। आप लोगों का शरीर सदाई चंदन से पूजित होता था। आज आप अकेले मेले कुचेले जंगलों में भटक रहे हैं। ऐसा देखकर मुझे कैसे शांति मिल सकती है? आपके महलों में महाराज युधिष्ठिर की जय हो, महाराज युधिष्ठिर की कीर्ति फैले, ऐसे ऐसे हजारों ब्राह्मणों के आशीर्वाद मिलते थे। कितने ब्राह्मणों की भोजन में पंक्तियां लगती थी। आप उन ब्राह्मणों के बीच में जाकर सम्मान से भोजन कराते थे, उसके बाद आप भोजन करते थे। आज कंदमूल फल खाकर निर्वाह कर रहे हो। मेरे प्यारे स्वामी भीमसेन को बनवासी और दुखी देखकर, हे महाराज, क्या आपके चित्त में क्रोध नहीं आता? भीमसेन अकेले रणभूमि में सब कौरवों को मार डालने का उत्साह रखते हैं, परंतु फिर भी ये आपका रुख न देखकर मन महसूस कर रह जाते हैं। आपको भी विचार नहीं आता? अर्जुन की दो बाहों के होने पर भी हजार बाहों वाले कार्तवीर्य अर्जुन के समान बलशाली हैं। इन्हीं के अस्त्र कौशल से चकित होकर बड़े बड़े राजा आपके चरणों में प्रणाम करते थे और आपके यज्ञ में आकर ब्राह्मणों की सेवा करते थे। वही देवता और दानवों के पूजनीय पुरुष सिंह अर्जुन आज आपके साथ वनवासी हुए फिर रहे हैं, आपके चित्त में क्रोध नहीं आता? सांवला रंग, विशाल शरीर, हाथ में ढाल और तलवार और वीरता के अप्रतिम नकुल और सहदेव को वनवासी देखकर आपकी आंखें नहीं भरती? राजा द्रुपद की पुत्री, महात्मा पांडु की पुत्रवधु, धृष्टद्युम्न की बहन और पांडवों की पतिव्रता पत्नी मैं द्रौपदी आज वन वन भटक रही हूं और आपकी सहन शक्ति बढ़ रही है, आप में कोई क्रोध नहीं है? जिसमें क्रोध और तेज न हो वो कैसा क्षत्रिय होता है? जो समय आने पर अपना तेज प्रकट नहीं कर सकता, सभी प्राणी उसका तिरस्कार करते हैं। छिपी हुई आग में भी बार बार फूंक लगाने से उसमें भी तेजी आती है, परंतु आप इतना सुनने पर भी कुछ नहीं करते? शत्रुओं से क्षमा के साथ व्यवहार करोगे? शत्रुओं के साथ तो दंड की भाषा बोलनी चाहिए। आपका प्रताप कितना विलक्षण, राजसु यज्ञ में इतना बड़ा आपका प्रताप देखा गया और आज आप वन में क्षमा के नाम से शत्रुओं से पद्दलित होकर फिर रहे हैं, आपको विचार नहीं आता? महाराज सुनिए, पहले जमाने में राजा बलि ने अपने पितामह प्रह्लाद से पूछा था कि पितामह, क्षमा उत्तम है या क्रोध? आप मुझे निष्पक्ष होकर ठीक ठीक समझाइए। प्रह्लाद ने कहा कि पुत्र, क्षमा और क्रोध दोनों की अपनी अपनी जगह एक व्यवस्था है, न तो सर्वदा क्रोध करना चाहिए और न ही सर्वत्र क्षमा करनी चाहिए। पात्र विशेष देखकर क्षमा करो और दुष्टों के कर्तव्यों पर सदाई क्रोध की नजर रखो। जो पुरुष सर्वदा क्षमा करते जाते हैं उनके सेवक, पुत्र, दास और उदासीन वृत्ति के पुरुष भी कटु वचन कहकर तिरस्कार करने लगते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं। धूर्त पुरुष क्षमाशील को दबाकर उसकी स्त्री को भी हड़प लेना चाहते हैं। स्त्रियां भी स्वेच्छानुसार बर्ताव करने लगती हैं और पातिव्रत धर्म से भ्रष्ट होकर अपने पति का अपकार कर डालती हैं। इसके अतिरिक्त जो पुरुष कभी क्षमा नहीं करता, हमेशा क्रोध करता है, वे क्रोध के आवेश में आकर बिना विचारे किसी को किसी प्रकार का दंड दे देता है और वो भी अविवेकी कहलाता है। वह अपने मित्रों का विरोधी होता है, कुटुंब का शत्रु होता है, सब जगह से अपमानित होने के कारण उसके धन की हानि होती है, दुत्कार मिलती है, तिरस्कार मिलता है, उसके मन में संताप और ईर्ष्या तथा द्वेष बढ़ते हैं, इससे उसके हर आदमी शत्रु हो जाते हैं। इसलिए हर समय क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध या आदमी अन्यायपूर्वक किसी को दंड दे बैठता है तो ऐश्वर्य, स्वजन और अपने प्राणों से भी वो हाथ धो बैठता है। जो सबसे रौब और दाब के साथ बात करता है, लोग उससे डरते हैं और उसकी भलाई करने से अपना हाथ खींच लेते हैं और उसमें दोष देखकर चारों ओर फैला देते हैं। इसलिए न तो हमेशा उग्रता का बर्ताव करना चाहिए और न ही हमेशा सरलता का बर्ताव करना चाहिए। समय के अनुसार उग्र बनो, समय के अनुसार सरल भी बनो। समय के अनुसार सरलता और उग्रता इस लोक और परलोक में सुख का कारण होता है। अब मैं तुम्हें क्षमा करने का अवसर बतलाता हूं। प्रह्लाद जी बोल रहे हैं, यदि किसी मनुष्य ने पहले हमारा उपकार किया हो फिर उसमें कोई बड़ा अपराध आ जाए तो उसके पहले उपकार पर दृष्टि रखकर उसे क्षमा करना चाहिए। हे बलिराजन, यदि कोई मनुष्य मूर्खतावश अपराध कर दे तब भी उसे क्षमा करना चाहिए, क्योंकि वो मूर्ख है, चतुर नहीं है, उसमें विवेक नहीं है, वो क्षम्य है। इसके विपरीत जो जानबूझकर अपराध करते हो और ऊपर से कहते हो कि हमने जानबूझकर नहीं किया है, तो उन्हें थोड़ा अपराध करने पर पूरा दंड देना चाहिए, परंतु कुटिल पुरुष को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। एक बार का अपराध हो तो उसको भी क्षमा कर देना चाहिए, पर दूसरी बार यदि वो अपराध करे तो उसे दंड अवश्य देना चाहिए। मृदुलता से उग्र और कोमल दोनों प्रकार के पुरुष वश में किए जाते हैं। मृदुल पुरुष के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, इसलिए मृदुलता ही श्रेष्ठ साधन है। देश काल सामर्थ्य और कमजोरी का पूरा पूरा विचार करके मृदुलता और उग्रता का व्यवहार करो। कभी कभी तो क्षमा भय से भी क्षमा करनी पड़ती है। यदि कोई ऊपर कही बातों के प्रतिकूल बर्ताव करता हो तो उसे क्षमा नहीं कर क्रोध से काम लेना चाहिए। सुना महाराज, ये प्रह्लाद जी की भाषा है। प्रह्लाद भी भगवान के भक्त थे। हे युधिष्ठिर महाराज, धृतराष्ट्र के पुत्र अपराध पर अपराध करते जा रहे हैं, उनका लालच असीम होकर फैलता जा रहा है और आप उन पर क्रोध नहीं करते हैं। क्रोध करने का समय आया फिर भी आप क्षमा करते हैं, क्या बात है? आप उन्हें क्षमा न करके उन पर क्रोध कीजिए और आगे का विचार कीजिए। युधिष्ठिर ने बड़े शांत और प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, मनुष्य को क्रोध के वश में न होकर क्रोध को अपने वश में करना चाहिए। जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली वह कल्याण का पात्र हो गया। क्रोध के कारण मनुष्यों का नाश होता है। मैं अवनति के हेतु क्रोध के सामने कैसे हो सकता हूं, क्योंकि इससे बड़ा भारी पतन होता है। क्रोधी मनुष्य पाप करता है, गुरुजनों को मारता है, वो कैसे कल्याण करेगा, स्वयं विपत्ति में फंस जाएगा। क्रोधी मनुष्य ये विचार नहीं करता कि मुझे क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, जो भी मन में आया बक डालता है। उसे इस बात का पता नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं, जो चाहे कर डालता है। वे जिलाने योगी को मार डालता है, मार डालने योगी की पूजा करता है। क्रोध के आवेश में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, वो व्यक्ति नरक में जाता है। क्रोध सारे दोषों का घर है। बुद्धिमान पुरुष को अपनी इस लोक की और परलोक की उन्नति करनी हो तो सबसे पहले क्रोध पर टेढ़ी नजर करो। हम तो कहते हैं कि क्रोध पर क्रोध करो। क्रोध के दोष कितने होते हैं ये गिने नहीं जा सकते। इससे ये सब सोचने विचारने से मेरे मन में क्रोध आता ही नहीं है, मैं क्या करूं। जो मनुष्य क्रोध करने वाले पर भी क्रोध नहीं करता क्षमा करता है, वह अपनी और क्रोध करने वाले की महासंकट से रक्षा करता है। वह दोनों का रोग दूर करने वाला चिकित्सक है। तुम झूठ बोलने की अपेक्षा सच बोलने वाला कितना लाभकारी है। क्रूरता की अपेक्षा कोमलपना उसी प्रकार उत्तमकारी है। क्रोध की अपेक्षा क्षमा बहुत ऊंची है। यदि दुर्योधन मुझे मार भी डाले तो भी मैं अनेक दोषों से भरे और महात्माओं से त्यागे हुए क्रोध को अपने अंदर नहीं ला सकता। मैंने ये निश्चय किया है कि तत्वदर्शी पुरुष में, जिसे तेजस्वी कहते हैं, उनका तेज क्रोध का थोड़ा ही होता है। उनका तेज अपने ज्ञान का होता है, उन्हें क्रोध कभी नहीं आता। ज्ञान से क्रोध एकदम शांत हो जाता है, यही उनका तेज है। क्रोधी मनुष्य कर्तव्य को भूल जाता है, मर्यादा को भूल जाता है, अवध्य का अवध्य करता है, गुरुजनों को भी कटु वचन सुनाता है, इसलिए वो अपने आप ही नष्ट हो जाता है। काम करने की चतुराई समाप्त हो जाती है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के उपाय क्रोधी मनुष्य को कभी नहीं सूझते। अच्छे अच्छे गुण क्रोधी मनुष्य से भाग जाते हैं। क्रोध की आग बड़ी भयंकर होती है। मैं मूर्खों की बात नहीं कहता, मैं समझदार आदमियों की बात कहता हूं कि वे क्षमा को त्याग कर क्रोध कैसे अपने में ला सकते हैं। मनुष्य में यदि क्षमाशीलता न हो तो आज सारे लोग आपस में लड़ झगड़ कर मर मिट जाए। एक दुखी दूसरे को दुख दे, दंड देने वाले गुरुजनों पर भी प्रहार करने के उद्यत हो जाए, तब तो कहीं धर्म रहेगा ही नहीं। द्रौपदी, गाली के बदले गाली नहीं दी जाती, मार के बदले मार नहीं दी जाती, तिरस्कार के बदले में तिरस्कार नहीं दिया जाता। पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, पति पत्नी को, पत्नी पति को नष्ट कर देते हैं इसी क्रोध के कारण। कोई मर्यादा, कोई व्यवस्था, कोई सौहार्द समाज में रहेगी नहीं। और जो गाली देने पर भी मारने पर भी क्षमा करता है, क्रोध को वश में करता है, वह उत्तम है, विद्वान है। क्रोधी मूर्ख है, वो नरक का भागी है। महात्माओं ने यही बात कही। काश्यप ने कहा है, क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है, क्षमा स्वाध्याय है। जो मनुष्य क्षमा के इस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप को जानता है वह सब कुछ क्षमा कर सकता है। क्षमा ही ब्रह्म है, क्षमा ही सत्य है, क्षमा ही भूत और भविष्यत है, वही तपस्या है। क्षमावान पुरुष को ब्रह्मलोक बड़ी सहजता से मिलते हैं। क्षमा तेजस्वियों का तेज है। क्षमा में सारे लोक, लोकोपकारक, यज्ञ, सत्य, ब्रह्म सब कुछ प्रतिष्ठित है। द्रौपदी, मुझे राज्य छोड़ने में कोई संकोच नहीं, ऐश्वर्य छोड़ने में मुझे कोई संकोच नहीं, परंतु मैं क्षमा को किसी प्रकार से नहीं छोड़ सकता। यहां सम्मान और परलोक में शुभ गति है। क्षमा के द्वारा सम्मान और परलोक में हमको शुभ गति दोनों लाभ है। जिन्होंने क्षमा के द्वारा क्रोध को दबा लिया उनकी परम गति हो गई। इस प्रकार कश्यप ने बड़ी बड़ी क्षमा की बातें कही हैं। छोड़ो क्रोध, छोड़ो और क्षमा का सहारा लो। भगवान श्री कृष्ण, पितामह भीष्म, आचार्य धौम्य, मंत्री विदुर, कृपाचार्य संजय, महात्मा वेदव्यास, इनसे जाकर पूछो कि क्षमा की कितनी प्रशंसा की जा सकती है। क्षमा और दया ज्ञानियों का सदाचार है, यही सनातन है। मैं सच्चाई के साथ क्षमा और दया का पालन करना चाहता हूं द्रौपदी, और अब तुमको क्या कहना है। युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रौपदी ने कहा, हे धर्मराज, इस जगत में धर्माचरण, दया भाव, क्षमा, सरलता के व्यवहार से तथा लोक निंदा के भय से राज लक्ष्मी नहीं मिलती। ये बात प्रत्यक्ष है कि आप में और आपके महाबली भाइयों में प्रजा पालन करने के सभी गुण हैं। आप लोग दुख भोगने योग्य नहीं है, फिर भी आपको ये कष्ट सहन करना पड़ रहा है। आपके भाई राज्य के समय तो धर्म पर प्रेम रखते ही थे, इस दीनहीन दशा में भी धर्म से बढ़कर और किसी से प्रेम नहीं करते हैं। ये धर्म को अपने प्राणों से श्रेष्ठ मानते हैं। यह बात ब्राह्मण, देवता, गुरु सभी जानते हैं कि आपका राज्य धर्म के लिए, आपका जीवन धर्म के लिए। मुझे इस बात का दृढ़ निश्चय है कि आप धर्म के लिए भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव तथा मुझे भी त्याग सकते हैं, मेरे अंदर ये ज्ञान है। मैंने अपने गुरुजनों से भी सुना है कि यदि कोई अपने धर्म की रक्षा करे तो धर्म उसकी रक्षा करता है, परंतु मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि मानो वह भी आपकी रक्षा नहीं कर रहा है। आपने इतने धर्म का पालन किया, धर्म ने आपके अभी तक रक्षा ही नहीं की। जैसे मनुष्य के पीछे उसकी छाया चलती है, वैसे ही आपकी बुद्धि सर्वदा धर्म के पीछे चला करती है, तब वो धर्म कहां चला गया, क्यों नहीं आपकी रक्षा करता। सारी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट होकर आप भरी सभा में अपमानित हुए, जंगलों में फिर रहे हैं, धर्म कहां गया। कितने कितने साधु सन्यासी गृहस्थों की आपने आवश्यकताएं पूर्ण की, कितने कितने बड़े बड़े यज्ञ किए, स्वाहा स्वधा ये हरदम ध्वनियां होती थी। उस समय ऐसी कौन सी वस्तु थी जो आप ब्राह्मणों को दे नहीं सकते थे। अब तो आपके यहां पांच दोषों की शांति के लिए बलि वैश्वदेव यज्ञ किया जाता है और उसके बाद अतिथियों और प्राणियों को खिलाकर शेष बचे हुए अन्न से निर्वाह करते हो। आपकी बुद्धि ऐसी उल्टी हो गई कि आपने राज्य धन भाई तथा मुस्तक को जुए में हरा दिया। आपकी इस आपत्ति विपत्ति को देखकर मेरे मन में बड़ी वेदना होती है, मैं बेहोश हो जाती हूं। मनुष्य ईश्वर के अधीन है, उसकी स्वाधीनता कुछ भी नहीं है। ईश्वर ही प्राणियों के पूर्व जन्म के कर्म बीज के अनुसार सुख और दुख, प्रिय अप्रिय वस्तुओं का संयोग बैठाता है। जैसे कठपुतली सूत्रधार के इच्छा अनुसार नाचती है, वैसी सारी प्रजा ईश्वर इच्छा अनुसार संसार के व्यवहार में नाच रही है। ईश्वर बाहर भीतर सब जगह व्याप्त है, सबको प्रेरणा देता है, सबका साक्षी है। सूत में गुथी हुई मणियां, नाथे हुए बैल, जलधारा में गिरे हुए वृक्ष पराधीन होते हैं, ऐसे सब जीव ईश्वर के अधीन हैं। मिट्टी से उत्पन्न घड़ा आदि मध्य और अंत में मिट्टी के अधीन रहता है, ऐसे ही जीव आदि मध्य और अंत में ईश्वर के अधीन है। वह ईश्वर की ही प्रेरणा से स्वर्ग और नरक में जाता है। नन्ने नन्ने तिनके वायु के अधीन होते हैं, ऐसे ये जीव ईश्वर के अधीन है। आपकी विपत्ति और दुर्योधन की ये संपत्ति देखकर कभी कभी तो मैं ईश्वर पर भी क्रोध करती हूं। हे ईश्वर, इतना विषम बर्ताव क्यों, क्या किया हमारे पांडवों ने ऐसा कोई पाप जिनको इस प्रकार आप वन में धकेल रहे हो। क्या किया है दुर्योधन ने ऐसा बड़ा भारी पुण्य जो आज वहां विपत्ति में आनंद कर रहा है। यदि कर्म का फल कर्ता को नहीं मिलता तब तो अपनी उन्नति का कारण लौकिक बल ही है, मुझे निर्बल पुरुषों के लिए बड़ा शोक हो रहा है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय तुम मेरी बात फिर सुनो, मैंने तुम्हारे सुंदर मधुर आश्चर्य वचन, आश्चर्य भरे वचन सुन लिए, तुम इस समय ऐसी कैसी बातें कर रही हो। द्रौपदी, ये तो नास्तिकता की बातें हो रही है। प्रिय, मैं कर्म का फल पाने के लिए कर्म थोड़ा ही करता हूं। मैंने दान इसलिए थोड़ा ही दिया था कि मुझे आगे सुख मिले। मैंने दान इसलिए दिया कि दान करना मेरा कर्तव्य है। मैंने यज्ञ इसलिए नहीं किया था कि मुझे कभी विपत्ति आवे ही नहीं। मेरे पास यज्ञ की सामग्री थी, मैंने यज्ञ किया क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था। मैं तो अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। सुंदरी, मैं धर्म फल के लिए धर्म नहीं करता हूं कि मुझे धर्म का शुभ फल मिले। मैं धर्म पालन का कारण ये समझता हूं कि धर्म करना वेद की आज्ञा है, सत्पुरुषों ने उसका पालन किया है और उसी के अनुसार चलना मेरा धर्म है। धर्मज्ञ पुरुष धर्म को किसी नाशवान फल के लिए अपनाएगा, उसका कोई तोल मोल करेगा, वो तो निंदनीय कृत्य है। जो धर्म को दूहना चाहता है उसे धर्म का फल नहीं मिलता। जो धर्म करके नास्तिकतावश उस पर शंका करता है द्रौपदी, वो पाप की बात होती है। मैं तुम्हें ये बात बड़ी दृढ़ता के साथ कहता हूं कि धर्म पर कभी शंका मत करना, क्योंकि धर्म पर शंका करने वाले की अधोगति होती है। जो दुर्बल हृदय धर्म और ऋषियों के वचनों पर शंका करता है वो मोक्ष से दूर हो जाता है। वेदपाठी धर्मात्मा और कुलीन पुरुष को ही वृद्ध कहा जाता है, केवल अवस्था से वृद्ध नहीं कहलाते हैं। वह पापी तो चोरों के समान है जो मूर्खतावश शास्त्रों का उल्लंघन करके धर्म पर शंका करता है। अभी कुछ ही दिन पहले मार्कंडेय ऋषि ने को देखा था ना, तुम जानते हो मार्कंडेय ऋषि कौन है? ये चिरंजीवी हैं। इनका 27 कल्पों तक भी नाश नहीं हुआ। व्यास, वशिष्ठ, मैत्रेय, नारद, लोमस, शुक्र आदि सभी ऋषि धर्म पालन से ही तो ज्ञान संपन्न हुए। ये बात तुम्हारे सामने है कि वे लोग दिव्य भोग से युक्त हैं, साप वरदान दे सकते हैं, देवताओं से भी बड़े हैं, उनमें अद्भुत शक्ति आई है। वो काय से आई है? केवल धर्म पालन से ही तो आई है। तुम अपने मूड मन से ईश्वर और धर्म पर आक्षेप मत करो द्रौपदी, क्योंकि तुम यदि ऐसी शंका करने लग जाओगी तो तुम स्वयं भी तो धर्म का आचरण करती हो। धर्म पर शंका करने वाला मूर्ख होता है। बड़े बड़े विचारशील एवं स्थित प्रज्ञ को लोग पागल कहते हैं, परंतु वो पागल नहीं होते, वो महापुरुष होते हैं। वह घमंडी अपने हाथों से अपने कल्याण का तिरस्कार करता है जो ईश्वर और धर्म पर संदेह करता है। जो लौकिक वस्तुओं को सत्य मानता है, राज्य को सत्य मानता है, मान प्रतिष्ठा आदि को सत्य मानता है, अपमान और तिरस्कार को सत्य मानता है, राज्य को छोड़कर वनवास में जाना ये उधर सत्य मानता है, फिर वो अज्ञान के अंदर ही तो डूबा हुआ है। इसीलिए वो ईश्वर और धर्म पर संदेह करता है। ऐसा आदमी लोभ के मार्ग में चलता है, नरक मिलता है। धर्म का पालन करने वाला अनंत सुख को प्राप्त करता है। जो ऋषियों की बात नहीं मानता, धर्म का पालन नहीं करता, शास्त्रों का उल्लंघन करता है, वह एक जन्म में तो क्या अनेक जन्मों में भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे समुद्र पार करने को इच्छुक व्यापारी के लिए जहाज ही एकमात्र आश्रय है, इसी प्रकार हे सुंदरी, इस संसार में धर्म पालन ही एक सबसे बड़ा जहाज है जो सारे जगत से उद्धार कर सकता है। यदि तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ, स्वाध्याय, दान, सरलता ये निष्फल हो जाए तो किसी को मोक्ष न मिले, कोई विद्या न पढ़े, किसी को धन न मिले, सब लोग पशु सरीखे हो जाएंगे। बड़े बड़े ऋषि, देवता, गंधर्व सामर्थ्यवान होकर के भी धर्म का पालन क्यों करते हैं? मैं तुम्हें वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने पर श्रद्धा करने को कह रहा हूं, इतनी बात नहीं है। तुम्हारा भी तो अनुभव है, तुम्हारा और तुम्हारे भाई का जन्म यज्ञ रूप धर्म के आचरण से ही तो हुआ है। तुम्हारे जन्म का वृत्तांत इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि धर्म का फल अवश्य मिलता है। तुम्हारे पिता ने धर्म किया, यज्ञ किया और तुम पैदा हुए, और आज तुमको ही धर्म पर संदेह होने लग गया। पाप और पुण्य का उदय, कर्मोत्पत्ति का हेतु, सबका कारण अविद्या है। साधारण मनुष्य इन बातों को नहीं समझते, तत्ववेत्ता लोग इसका रहस्य समझते हैं। देवता लोगों को भी इस बात का ज्ञान नहीं है, कर्म फल अवश्य मिलता है, ये सनातन धर्म है। प्रिय, धर्म के संबंध में तुम्हारा संदेह कौरव को कुहरे की तरह नष्ट हो जाए, यही मैं चाहता हूं। तुम्हारी धर्म पर, ईश्वर पर श्रद्धा बनी रहे, इस पर कभी आक्षेप मत करो। द्रौपदी ने कहा, महाराज मैं आपके वचनों का बहुत सम्मान करती हूं, मैं धर्म और ईश्वर की अवमानना नहीं कर रही हूं, तिरस्कार नहीं करती। इस समय घोर विपत्ति में फंसी हुई और आपको घोर विपत्ति में देखकर मैं विलाप कर रही हूं, प्रलाप कर रही हूं, और मैं अभी इस संबंध में और भी विलाप और प्रलाप करूंगी। जानकार मनुष्य को कर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म किए केवल जड़ पदार्थ ही जो सकते हैं, जड़ पदार्थ ही रह सकते हैं, चेतन प्राणी नहीं। पूर्व जन्म के कर्मों की बात तो तनिक सा विचार तो करो। गाय का बछड़ा जन्मते ही दूध पीने के लिए थन पीने लगता है और धूप लगने पर छाया में जा बैठता है, उसको कौन सिखाता है? ये पूर्व जन्म का संस्कार है। सब प्राणी अपनी उन्नति समझते हैं और प्रत्यक्ष रूप से कर्म का फल भोग रहे हैं, इसलिए आप कर्म कीजिए, इससे उकताइए मत। आपके पास शक्ति होते हुए ये वनवासी जीवन क्यों है, इस पर आपने विचार नहीं किया? यदि हिमालय जैसा पहाड़ भी प्रतिदिन खाया जाए और उसमें वृद्धि न हो तो थोड़े दिन में क्षीण हो जाएगा। इसलिए धन की रक्षा और वृद्धि करने के लिए कर्म करने की बड़ी आवश्यकता है। प्रजा यदि कर्म न करे तो उजड़ जाएगी, यदि उसका कर्म निष्फल हो जाए तो उसकी उन्नति रुक जाएगी। यदि कर्म को निष्फल मान लिया जाए तो भी कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म किए बिना तो निश्चित जीविका भी तो नहीं चलती। केवल भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखे रखना कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये तो हटवादिता है। जो कर्म न करके आलस्यमय जीवन व्यतीत करता है वह पानी में पड़े कीचड़ के घड़े की भांति गल जाता है। काम करने की शक्ति रहते हुए भी उससे हटवश अलग रहते हैं, वो चिरकाल तक जीवन धारण नहीं कर सकते। इसलिए महाराज मैं तो आपको यही कहूंगी कि आपको कर्म करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय द्रौपदी की बातों को अभी तक सभी भाई सुन रहे थे। सुनते सुनते उस समय भीमसेन एकदम क्रोध में आ गए, लंबी सांस लेते हुए भाइयों के बीच में खड़े हो गए और महाराज युधिष्ठिर के पास जाकर कहने लगे, भाई जी आप सत्पुरुषोचित धर्मानुकूल राजमार्ग से चलिए, यदि हम लोग धर्म अर्थ और काम से वंचित होकर इस तपोवन में पड़े रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दुर्योधन, नीच दुर्योधन ने हमारा राज्य धर्म सरलता और बलपौरुष से नहीं लिया है, कपट और द्यूत के सहारे से हम लोगों को धोखा दिया है, उसके सामने धर्म निभाओगे क्या? धर्म को भ्रष्ट करोगे? हम कौरवों के अपराध को जितना जितना क्षमा करते हैं उतना उतना वे हमको असमर्थ और कमजोर मानकर दुख पर दुख देते जा रहे हैं। इससे तो अच्छा यही है कि हम लोग टालमटोल न करके लड़ाई छेड़ दें, निष्कपट भाव से युद्ध करते हुए यदि मर जाए तो वो अच्छा है, ताकि मरने के बाद हमको अमर लोक की प्राप्ति होगी। यदि हम कौरवों को तहस नहस करके पृथ्वी के राजा हो जाए तो हमारा बल पौरुष काम आएगा और संसार में एक आदर्श रहेगा कि इन्होंने पापियों का संहार किया। हम अपने धर्म में स्थित हैं, हम चाहते हैं कि हमारा यश हो और कौरवों से बैर का बदला लें, तब तो ये आवश्यक है कि अभी हमको युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए, कह देना चाहिए हमें 12 वर्ष का वनवास स्वीकार नहीं है, तुमको जो करना है सो कर लो। उसके बाद तो वही सेना लेकर आएंगे तो उन्हीं के द्वारा ही आक्रमण किया हुआ माना जाएगा और हम उनके आक्रमण का मुकाबला करेंगे। मनुष्य को केवल धर्म, केवल अर्थ, केवल काम के सेवन में नहीं लगना चाहिए, इन तीनों का इस प्रकार सेवन करना चाहिए कि परस्पर में विरोध न हो। इस विषय में शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि दिन के पहले भाग में धर्माचरण करो, दूसरे भाग में धनोपार्जन करो, सायंकाल होने पर काम सेवन करो। मैं जानता हूं और सभी जानते हैं कि आप निरंतर धर्माचरण में संलग्न रहते हैं, फिर भी सभी आपको वेद मंत्रों के द्वारा कर्म करने की सलाह देते हैं। दान, यज्ञ, सत्पुरुषों की सेवा, वेदाध्ययन, ये सब धर्म है, तो शत्रुओं के साथ युद्ध करना भी धर्म है। अधर्म को नष्ट करने के लिए युद्ध करना भी क्षत्रिय का धर्म है। परंतु धर्मराज, मनुष्य में चाहे सभी गुण हो फिर भी धन न हो तो धर्माचरण कैसे करेगा? यह निश्चय ही जगत का आधार धर्म है और धर्म से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। परंतु धर्म की सेवा के लिए धन चाहिए। धन भिक्षावृत्ति से अथवा उत्साहहीन बैठकर तो अपने आप मिलता नहीं, वह तो धर्म के आचरण से ही मिलता है। ब्राह्मण तो भीख मांग करके भी निर्वाह कर लेता है, क्षत्रिय के लिए भिक्षावृत्ति निषिद्ध है। इसलिए आपको तो पराक्रम करके धन पाने का उद्योग करना चाहिए और क्षत्रिय धर्म को स्वीकार करके मुझे और अर्जुन को आज्ञा देकर शत्रुओं का नाश कराइए। आप भले ही वन में बैठे रहो, आप हम दो को आगे भेज दो, आगे हम सब अपने आप देख लेंगे। यदि आप क्षत्रियोचित धर्म का परित्याग कर देंगे तो जगत में आपकी हंसी होगी। धर्म से डिगना संसार में अच्छी बात नहीं मानी जाती। कौन गदाधारी है जो मेरे साथ युद्ध कर सकता है? कौन धनुर्धर है जो अर्जुन के साथ युद्ध कर सकता है? यद्यपि शहद की मक्खियां कमजोर होती हैं, फिर भी वे सब मिलकर मधु निकालने वाले का प्राण ले लेती हैं। वैसे ही निर्बल पुरुष भी इकट्ठे होकर बलवान शत्रु का नाश कर सकते हैं। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का रस ग्रहण करता है और जल बरसाकर पृथ्वी का पालन करता है। वैसे ही आप दुर्योधन से राज्य छीनो और प्रजा के अंदर वो धन लुटाओ, प्रजा को देओ। फिर पितामह ने शास्त्र विधि के अनुसार प्रजा पालन किया है। हमारे पितामह ने प्रजा पालन हमारा सनातन धर्म है और इस धर्म का पालन एक क्षत्रिय युद्ध में विजय प्राप्त करके ही कर सकता है। इसलिए सब प्रकार का विचार छोड़ो, लोगों में ये बात फैलेगी कि ये लोग कायर होकर वन में चले गए तो इसके बाद कायरता ही कायरता बढ़ेगी, धर्म कौन देखेगा? हम अपने सहायकों और शक्ति के द्वारा शत्रु के हाथ से अपना राज्य क्यों नहीं लौटा लें, इस बात पर आप विचार कीजिए। महाराज युधिष्ठिर ने भीमसेन की पीठ थपथपाते हुए कहा, भैया भीमसेन, मनुष्य पुरुषार्थ, अभिमान और वीरता से युक्त होने पर भी सबसे पहले उसको अपने मन के साथ लड़ाई करनी चाहिए। सबसे बड़ा शत्रु मन होता है। भीमसेन, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तुम्हारी बात का अनादर नहीं करता हूं। मैं ऐसा समझता हूं ये जो कुछ हो रहा है ये हमारे भाग्य से हो रहा है। जिस समय हम जुआ खेलने के लिए द्यूत सभा में आए, उस समय दुर्योधन ने भरतवंशी राजाओं के सामने ये दाव लगाया और कहा था कि युधिष्ठिर, यदि तुम जुए में हार जाओगे तो भाइयों सहित 12 वर्ष तक वन में रहना होगा, 13वें वर्ष गुप्तवास करना होगा। गुप्तवास के समय यदि कौरवों के दूत तुम्हें ढूंढ लेंगे तो फिर 12 वर्ष के लिए वन जाना पड़ेगा और 13वें वर्ष में फिर यही शर्त रहेगी। यदि मैं हार गया तो हम सभी भाई अपना ऐश्वर्य छोड़कर नियम के अनुसार वनवास और गुप्तवास करेंगे। बताओ भीमसेन, उस समय अपने पितामह भीष्म वगैरह वहां थे कि नहीं, उनके सामने ये प्रतिज्ञा हुई कि नहीं, मैंने दुर्योधन की बात मानी थी कि नहीं, वैसी प्रतिज्ञा मैंने वहां की थी कि नहीं, ये बात तुम्हें और अर्जुन को कोई अज्ञात हो वो बात थोड़ी, तुम्हें तो मालूम है। इसके बाद अधर्म में जुआ जरूर हुआ, हम लोग हार गए, परंतु ये अधर्म हमने नहीं किया भीमसेन, ये अधर्म पांडु कौरवों की तरफ से था, हम हार गए। हार गए, अब नियम के अनुसार वनवास में है तो है, इससे क्या फर्क पड़ता है। सत्पुरुषों के सामने एक बार प्रतिज्ञा करके फिर उसको राज्य के लिए अपने बाहुबल और शस्त्र बल के द्वारा उसे तोड़ना, ये कुलीन राज्य कुलीन राजा के लिए प्रतिज्ञा भंग करके ऐसे राज्य को प्राप्त करना बहुत कष्टदायी होगा। मैंने कुरुवंशी वीरों के बीच में प्रतिज्ञा पूर्वक जो बात कही है उसे मैं कैसे टाल सकता हूं। जैसे किसान बीज बोकर पकने तक उसके फल की आशा लगाए बैठा रहता है, वैसे तुम्हें भी अपनी उन्नति के समय की आगे तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। भीमसेन, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा सुन लो, मैं देवत्व की प्राप्ति तथा इस लोक में जीवित रहने की अपेक्षा धर्म से अधिक प्रेम करता हूं। मेरा ऐसा दृढ़ निश्चय है कि राज्य चला जाए, पुत्र चला जाए, कीर्ति चला जाए, धन चला जाए, परंतु ये सब मिलकर के भी सत्य धर्म के 16वें हिस्से की भी बराबरी नहीं ला सकते, तो धर्म बड़ा हुआ, ये बड़े थोड़े ही हुए। भीमसेन थोड़े से एक नम्र होकर कहने लगे, भाई जी, जैसे सलाई से लेते लेते एक दिन अंजन समाप्त हो जाता है, आंख में काजल डालते सलाई से लेते थोड़ा सा लेते हैं फिर कभी कभी खत्म होता ही है, वैसे ही मनुष्य की आयु पल पर छींचती जा रही है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या समय की बाट जोते हुए बैठे रहना चाहिए। जिसे अपने लंबी उम्र का पता हो, अपने अंत समय का ज्ञान हो, जो भूत भविष्य और सब वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखता हो, उसको तो समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। महाराज, 12 वर्ष तक जीवित रहेंगे क्या? यदि 12 वर्ष के अंदर मर गए तो कायरों के भांति हमारी मृत्यु मानी जाएगी। मृत्यु सिर पर सवार है, इसलिए उसके प्रकट होने से पहले हमें अपना राज्य प्राप्त करके कीर्ति स्थापित करनी चाहिए, उसके बाद मरना चाहिए या युद्ध में मरना चाहिए। मृत्यु मृत्यु का भी तो कोई रूप होता है ना, कायरों के भांति हम लोग जंगलों में फिर फिर करके मर जाए क्या फायदा? अनुमान लगाओ कोई सिंह आ गया, खा गया, मर गए, फिर हमारी बाहुबल का क्या होगा, अर्जुन के शस्त्रों का क्या होगा? आप धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों पर इतनी क्षमा क्यों करते हैं? क्षमा तो उस पर करो जो क्षमा के योग्य हो, चुपचाप बैठकर क्यों विलंब करते हो? आप हम लोगों को वन में गुप्त रखना चाहते हैं, ये तो ऐसा ही है जैसे कोई घास के फूल घास के पूले से हिमालय को ढकना चाहता है। आप एक जगत में प्रसिद्ध महात्मा है, जैसे सूर्य आकाश में छिपकर नहीं बिचर सकता, वैसे ही आप भी कहीं छिप नहीं सकते हैं। अज्ञातवास तो एक धोखा है, आप छिप जाएंगे क्या? आप प्रकट नहीं होंगे क्या? अर्जुन नकुल तथा सहदेव एक साथ रहकर छिप जाएंगे क्या? आप दिवा स्वप्न देखते हो, द्रौपदी छिप कर रह जाएगी? मुझे तो बच्चा बच्चा जानता है, बूढ़े बड़े सब जानते हैं, मैं एक वर्ष तक गुप्त कैसे रह सकता हूं? हम लोग अब तक वन में 13 महीने बिता चुके हैं, वेद के अनुसार आप इन्हें 13 वर्ष गिन लीजिए, महीने वर्ष की प्रतिनिधि है, इसलिए 13 महीने में 13 वर्ष हो गया, और दुर्योधन को ललकारिए और कहिए कि हमारा समय पूरा हो गया, क्षत्रियों के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है, इसलिए आप युद्ध का विचार कीजिए। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद युधिष्ठिर ने कहा, वीर भीमसेन, मैं ऐसा समझता हूं कि तुम्हारी दृष्टि धर्म पर नहीं अर्थ पर है, इसलिए तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं धर्म पर दृष्टि रखता हूं, इसलिए मैं जो बात कह रहा हूं अपनी दृष्टि से वो भी ठीक कह रहा हूं। भीमसेन, केवल साहस से प्रतिज्ञा नहीं बदली जा सकती, केवल साहस से कोई काम बनता भी नहीं है, ऐसे आदमी को दुख भोगना पड़ता है, देव भी अनुकूल होना चाहिए, बल एवं घमंड से उत्साहित होकर चंचलता करने पर लोग हमको क्या कहेंगे, भूरी श्रवा, शल, जलसंध, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन आदि धृतराष्ट्र के प्रचंड पुत्र शस्त्रास्त्र में, विद्या में बड़े कुशल हम पर आक्रमण करने के लिए वैसे ही तैयार हैं। पहले हम लोगों ने जिन राजाओं को बलपूर्वक दबाया था वे भी अब उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्योधन उनका बड़ा सम्मान कर रहे हैं। दुर्योधन ने कौरव सेना के सब वीरों, सेनाधिपतियों और मंत्रियों को तथा उनके परिवार वालों को बड़ा बड़ा लालच और भोग सामग्री देकर अपने पक्ष में कर लिया है। वे दम रहते दुर्योधन की ओर से लड़ेंगे, मेरा निश्चय विचार है। यद्यपि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य हम पर प्रेम की दृष्टि रखते हैं, कृपा की दृष्टि रखते हैं, तथापि उनके मन में ये विचार रहेगा कि हमने इस राज्य का अन्न खाया है, इसलिए इसका बदला चुकाने के लिए दुर्योधन की ओर से प्राणपण भाव से लड़ेंगे। वे सब अस्त्र शस्त्र के मर्मज्ञ हैं और ईमानदार हैं। मेरा विश्वास है कि समस्त देवताओं के साथ इंद्र भी भीष्म को नहीं जीत सकते। कर्ण की वीरता, उसका उत्साह और प्रवीणता अपूर्व है। उनका शरीर अभेद्य कवच से ढका रहता है। उनको जीते बिना तुम दुर्योधन को मार ही नहीं सकते। इस प्रकार भीमसेन के साथ युधिष्ठिर की बातचीत होती रही। उसी समय में कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज आ गए। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, पांडवों ने आगे बढ़कर वेदव्यास जी का स्वागत किया, उच्चासन पर विराजमान किया और वेदव्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, प्रिय युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे सबके मन की बात जान रहा हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारे हृदय में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन आदि का जो भय है उसका मैं शास्त्र की रीति से विनाश करूंगा। तुम मेरा बतलाया हुआ उपाय करो और तुम्हारे मन का सारा दुख मिट जाएगा। यह कहकर वेदव्यास जी युधिष्ठिर जी को एकदम एकांत में ले गए और बोले, युधिष्ठिर, तुम मेरे शरणागत शिष्य हो, इसलिए मैं तुम्हें मूर्तिमान सिद्धि के समान प्रतिस्मृति नाम की विद्या देता हूं। तुम ये विद्या अर्जुन को सिखा देना, इसके बल से तुम्हारा राज्य शत्रुओं के हाथ से छिन जाएगा। अर्जुन तपस्या और पराक्रम के द्वारा देवताओं के दर्शन की योग्यता रखता है। यह नारायण का सहचर महातपस्वी ऋषि नर है। युधिष्ठिर, इसको कोई नहीं जीत सकता, ये अच्युत स्वरूप है, इसलिए तुम इसको मेरी प्रतिस्मृति नाम की विद्या अवश्य दे देना। इस अस्त्र विद्या को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर धर्मराज, इंद्र, वरुण, कुबेर और धर्मराज के पास में भेजो अर्जुन को, यह उनसे विचित्र विचित्र अस्त्र शस्त्र प्राप्त करेगा जो अस्त्र भीष्म के पास नहीं है, कई अस्त्र द्रोणाचार्य के पास नहीं है, सब अस्त्र अर्जुन को मिल जाएंगे, क्योंकि उन अस्त्रों की प्राप्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। ऐसा कहकर वेद व्यास जी महाराज ने युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति विद्या का उपदेश दिया और उनसे अनुमति लेकर वे वहीं छिप गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर भगवान व्यास के उपदेशानुसार मंत्र का मनन और जप करने लगे, बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वे द्वैत वन से चलकर सरस्वती तटवर्ती काम्यक वन में आए। वेदज्ञ और तपस्वी ब्राह्मण भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वहां रहकर पांडव अपने मंत्री और सेवकों के साथ विधि पूर्वक पितरों की, देवताओं की और ब्राह्मणों की संतुष्टि करने लगे। धर्मराज ने एक दिन व्यास जी के अनुसार अर्जुन को एकांत में बुलाया और कहा, अर्जुन, भीष्म, द्रोण, कृपाचारी, कर्ण और अश्वत्थामा आदि शस्त्र अस्त्रों के बड़े मर्मज्ञ हैं। दुर्योधन ने सत्कार करके इन्हें अपने वश में कर लिया है। अब हमें केवल तुमसे ही आशा है। मैं इस समय तुम्हें एक अवश्य कर्तव्य बतलाता हूं। भगवान वेदव्यास ने मुझे गुप्त विद्या का उपदेश दिया है, उसका उपयोग करने पर सब जगत भली भांति दिखने लग जाएगा। तुम सावधानी के साथ मुझसे वो मंत्र विद्या सीख लो और उसके द्वारा देवताओं की कृपा प्राप्त कर लो। इसके लिए तुम्हें दृढ़ ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना होगा। धनुष, बाण, कवच और खड्ग लेकर साधुओं की तरह मार्ग में किसी को अवकाश दिए बिना उत्तर दिशा की यात्रा करनी होगी। तुम उधर चले जाओ, वहां तुम उग्र तपस्या करके मन को परमात्मा में लीन करते हुए देवताओं की कृपा प्राप्त करना। वृत्रासुर से भयभीत होकर देवताओं ने अपने सब अस्त्रों का बल इंद्र को सौंप दिया था, इसलिए सारे अस्त्र शस्त्र इंद्र के पास है। तुम आप इंद्र की शरण में जाओ, वे तुम्हें सारे शस्त्र अस्त्र दे देंगे। तुम आज ही मंत्र की दीक्षा लेकर इंद्रदेव के दर्शन के लिए जाओ। धर्मराज ने संयमी अर्जुन को शास्त्र विधि के अनुसार व्रत कराकर गुप्त मंत्र सिखला दिया और इंद्रकील नामक स्थान की ओर जाने की आज्ञा दे दी। अर्जुन अपना गांडीव धनुष, अक्षय तरकस और कवच से सुसज्जित होकर अपने भाइयों को नमन प्रणाम, ब्राह्मणों को नमन प्रणाम करके चले गए। तैयार हो गए। उसी समय द्रौपदी ने अर्जुन के पास आकर कहा, वीर, पापी दुर्योधन ने भरी सभा में मुझे बहुत सी अनुचित बातें कही थी। यद्यपि उनसे मुझे बहुत दुख हुआ था, वे तुम्हारे वियोग का दुख उससे भी बड़ा है, परंतु हमारे सुख दुख के एकमात्र तुम ही सहारे हो। हम लोगों का जीना मरना, राज्य और ऐश्वर्य प्राप्त करना तुम्हारे पुरुषार्थ पर अवलंबित है, इसलिए मैं तुम्हें जाने की सम्मति देती हूं और भगवान तथा समस्त देवी देवताओं से तुम्हारे कल्याण की प्रार्थना करती हूं। उस समय द्रौपदी के आंखों से अश्रुपात होने लगा। दुर्योधन ने सबको प्रणाम किया, उत्तर दिशा की यात्रा की। परम पराक्रमी अर्जुन जब इंद्र का दर्शन कराने वाली विद्या से युक्त होकर मार्ग में चल रहे थे, तब सभी प्राणी उनका रास्ता छोड़कर दूर हटे जा रहे थे। इंद्र की तेज चाल और इंद्र का तेजस स्वरूप देखकर सबके मन में भय होता जा रहा था और वे बहुत जल्दी ही देव सेवित हिमालय पर पहुंच गए, एक ही दिन पहुंच गए। तदनंतर वे गंधमादन पर्वत पर चले गए। बड़ी सावधानी के साथ रात दिन रास्ता काटते काटते इंद्रकील के समीप पहुंच गए। वहां उन्हें आवाज सुनाई पड़ी, हाय खड़े हो जाओ। इधर उधर देखने पर मालूम हुआ कि एक वृक्ष की छाया में कोई तपस्वी बैठा हुआ है। तपस्वी का शरीर तो बहुत दुर्बल, परंतु ब्रह्म तेज उसका चमचम कर रहा था। इस जटाधारी तपस्वी को देखकर अर्जुन खड़े हो गए। तपस्वी ने कहा, तुम धनुष्मान कवच और तलवार धारण करने वाले कौन हो? इस देश में आने का तुम्हारा क्या का प्रयोजन है? यहां शस्त्रों का कुछ काम नहीं होता, यहां शांत भाव वाले तपस्वी रहते हैं। यह कोई युद्ध क्षेत्र है? फेंक दो इनको। तपस्वी ने मुस्कुराकर कई बार यह बात कही, परंतु अर्जुन टस से मस नहीं हुए। उन्होंने शस्त्र न छोड़ने का निश्चय कर रखा था। अर्जुन को अविचल देखकर तपस्वी खूब हंसे और हंसते हुए कहा, अरे अर्जुन घबराना नहीं, मैं स्वयं इंद्र ही हूं, जो तुम्हारी इच्छा हो मुझसे वरदान मांग लो, तुम्हारी परीक्षा के लिए आया था। डरावनी भाषा में बोलकर मैंने देखा कि अर्जुन के मन में कितना शौर्य है। मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो, वरदान मांगो। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर इंद्र को प्रणाम किया, बोले, भगवान मैं आपसे संपूर्ण अस्त्र शस्त्र विद्या सीखना चाहता हूं, आप मुझे वही वरदान दीजिए जिससे मुझे सारे शस्त्रों का ज्ञान हो जाए जो आपको है। इंद्र ने कहा, वत्स अर्जुन, इतने शस्त्रों का ज्ञान सीखकर तुम क्या करोगे? कोई ऐश्वर्य मांगो, भोग पदार्थ मांगो, कोई राज्य मांगो, क्या मांगो? शत्रु का विनाश भी मांगो, कोई बात नहीं, इतने अस्त्र शस्त्रों की विद्या सीखकर क्या करोगे? अर्जुन ने कहा, हे देवादिदेव, मैं लोभ काम देवत्व सुख अथवा ऐश्वर्य के लिए अपने भाइयों को वन में नहीं छोड़ सकता। मैं तो अपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखकर अपने भाई के पास लौटूंगा, अपने भाइयों के पास लौटूंगा। इंद्र ने अर्जुन को समझाकर कहा, वीर बहुत अच्छी बात है, राज्य चाहे मिले चाहे न मिले, पर तुम्हारे भाइयों का प्रेम देखकर मैं बड़ा खुश हूं। तुम ऐसा करो, भगवान शंकर के दर्शन करो, जब तुम्हें भगवान शंकर का दर्शन होगा तब तुम्हें मैं सब दिव्य अस्त्र शस्त्र दे दूंगा। तुम उनके दर्शन के लिए प्रयत्न करो, उनके दर्शन से सिद्ध होकर तुम स्वर्ग में आ जाओगे। स्वर्ग में आ जाने पर फिर मैं वहां अपने आप तुमको शस्त्र अस्त्र दे दूंगा। शंकर के दर्शन के बिना वो अस्त्र शस्त्र नहीं दे सकता। इतना कहकर इंद्र वहीं अंतरित हो गए। जनमेजय ने पूछा, मनस्वी अर्जुन ने किस प्रकार दिव्य अस्त्र प्राप्त किए, ये बात मैं आपको विस्तार से सुनना चाहता हूं। वैशंपायन ने कहा, जन्मेजय, महारथी एवं दृढ़ निश्चयी अर्जुन हिमालय लांग कर एक बड़े कंटीले जंगल में जा पहुंचे। उनकी शोभा अपूर्व थी, उसे देखकर अर्जुन के मन में प्रसन्नता हुई। वे डाब के वस्त्र दंड मृगछाला कमंडलू धारण कर आनंद पूर्वक तपस्या कर रहे थे। पहले महीने में उन्होंने तीन तीन दिन पर पेड़ों से गिरे सूखे पत्ते खाए, दूसरे महीने में छह छह दिन पर, तीसरे महीने में पंद्रह पंद्रह दिन पर, चौथे महीने में बांह उठाकर पैर के अंगूठे की नोक पर निराधार खड़े हो गए, केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे। ये ध्रुव की तपस्या भी ऐसी कैसी भागवत में आती। नित्य जल में स्नान करने के कारण उनकी जटाएं पीली पीली हो गई थी। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर के पास जाकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भगवान अर्जुन की तपस्या के तेज से दिशाएं धूमिल हो गई हैं, आप उन्हें दर्शन दीजिए। भगवान शंकर ने उनसे कहा, मैं आज अर्जुन की इच्छा पूर्ण करूंगा। ऋषियों के जाने पर भगवान शंकर ने सोने का सा दमकता हुआ अपना भील का रूप बनाया, सुंदर धनुष सर्पाकार बाण लेकर पार्वती के साथ वे अर्जुन के पास आए। बहुत से भूत प्रेत भी वेश बदलकर भील भीलनियों के वेश में उनके साथ थे। भील वेशधारी भगवान शंकर ने अर्जुन के पास जाकर देखा कि मूक दानव जंगली शूकर का वेश धारण कर तपस्वी अर्जुन को मार डालने की घात देख रहा है। एक मूक नाम का दानव था, वो देख रहा अर्जुन बैठा है, पीछे जाकर खा जाए। भगवान शंकर ने देख लिया, इधर अर्जुन ने भी उस शूकर को देख लिया, सुअर बन के आया था। अर्जुन ने उसको देखकर अपने गांडीव धनुष पर सर्पाकार बाण कर धनुष टंकारते हुए मूक दानव से कहा, दुष्ट तू मुझ निरपराध को मारना चाहता है, इसलिए देख मैं तुझे पहले ही यमराज के हवाले किए देता हूं। ज्यों ही उसने बाण छोड़ा क्यों ही भील वेशधारी शिवजी ने रोक कर कहा, ए मैं पहले से इसे मारने का निश्चय कर रखा हूं, इसलिए तुम इसे मत मारो, पहले मैं मारूंगा। अभी तक बाण छोड़ा नहीं, बस छोड़ने वाले ही थे, शंकर जी ने आवाज कर दी भील वेश में। अर्जुन ने भील की बात की कुछ भी परवाह न करके अब बाण छोड़ ही दिया। शिवजी ने भी बाण छोड़ दिया, दोनों के बाण मूक के शरीर पर जाकर टकरा गए। बड़ी जोर से आवाज आई, इस प्रकार असंख्य बाणों से शुक्र का शरीर बिंद गया, वह दानव के रूप में प्रकट होकर मर गया। अब अर्जुन ने भील की ओर देखा, उन्होंने कहा, कौन हो तुम, इस मंडली के साथ निर्जन वन में क्यों घूम रहे हो, यह शुक्र मेरा शिकार है, ये मेरा तिरस्कार करने के लिए आया था, मैंने पहले इसको मारने का विचार कर लिया था, फिर तूने इसको क्यों मारा, अब मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। भील ने कहा, अरे इस शूकर पर मैंने तुमसे पहले प्रहार किया है, मेरा विचार भी तुमसे पहले का था, ये मेरा निशाना था, मैंने इसे मारा है, तुम तनिक ठहर जाओ, मैं अभी बाण चलाता हूं, शक्ति हो तो सहो, नहीं तो तुम्हें यही मुझ पर बाण नहीं तो तुम ही मुझ पर बाण चलाओ। भील की बात सुनकर अर्जुन आग बबूला हो गया। अर्जुन को आज तक ऐसा ललकारने वाला कोई नहीं मिला, और ये भील इतनी बातें करता है। अर्जुन ने भील पर बाणों की वर्षा कर दी, बाण पर बाण, बाण पर बाण, बाण पर बाण मारता गया, और अर्जुन के बाण जैसे ही भील के पास जाते भील उन्हें पकड़ लेता। भील वेशधारी भगवान शंकर हंसकर कहते, अरे और लगा बाण मार, ये इतने ही बाण है, तनक भी कमी नहीं रही, और लगा बाण। अर्जुन ने फिर बाणों की झड़ी लगाई, दोनों ओर से बाणों की खूब चोट होने लगी, भील का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। अर्जुन इस बात को देखकर बड़े आश्चर्य में डूब गए। अर्जुन बड़े क्रुद्ध होकर कुड़कुड़ करके बाण छोड़ते गए, हाथ में पकड़ते गए, अर्जुन के बाण समाप्त हो गए। अब अर्जुन को धनुष की नोक से अब अर्जुन ने धनुष की नोक से मारना प्रारंभ किया, यूं धनुष की नोक थी वो। भील ने धनुष भी छीन लिया, अर्जुन के पास तलवार थी, तलवार निकाला तो तलवार का प्रहार किया तो वह दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर गई। पत्थरों और वृक्षों से मारना चाहा, भील ने हंस हंस करके प्रहार लिए, प्रहार पकड़ लिए और उनको फेंक दिया। अब घुसे की बारी आई, भील ने बदले में जो अर्जुन के घुसे मारे, अर्जुन के शरीर पर घुसे लगने के बाद उसके तो होश हवाई उड़ गई। अब भील ने अपने दोनों भुजाओं में दबाकर एक पिंड कर दिया, वे हिलने डुलने में भी समर्थ हुए, दम घुटने लगा, लहू लुहान हो गए, जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। कई देर तक बेहोश होने के बाद अर्जुन को थोड़ा थोड़ा होश आया, और उन्होंने मिट्टी की एक वेदी बनाई, उस पर भगवान शंकर की स्थापना की और शरणागत होकर उनकी पूजा करने लगे। अर्जुन ने देखा कि जो पुष्प उन्होंने शिव मूर्ति पर चढ़ाया है वह भील के सिर पर है। अर्जुन इतना देखकर यूं देखने लिए क्या है, अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई, कुछ शांति भी हुई। इधर भील स्वरूप भगवान शंकर के चेहरे पर अपार प्रसन्नता, आनंद, कृपा, आशीर्वाद ये एक साथ टपक रहा था। अर्जुन उनके चरणों में प्रणाम किए। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर आश्चर्य के साथ घायल हुए अर्जुन से गंभीर वाणी में कहा, अर्जुन तुम्हारे कर्म की मैं बड़ी प्रशंसा करता हूं, तुम्हारे जैसा शूरवीर और धैर्यवान क्षत्रिय इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, तुम्हारा तेज और बल मेरे समान है, मैं तुम पर पूर्ण प्रसन्न हूं, तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करो, तुम सनातन ऋषि हो, मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान देता हूं जिसके प्रभाव से तुम शत्रुओं और देवताओं को भी जीत सकते हो, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें एक ऐसा अस्त्र बतलाता हूं जिसका निवारण संसार में कहीं है ही नहीं, तुम क्षण भर में वो मेरा अस्त्र धारण करो। अब अर्जुन ने भगवती पार्वती और भगवान शंकर का दर्शन किया, घुटने टेक कर चरणों में प्रणाम किया, गौरी शंकर को प्रणाम करके अर्जुन प्रेम से गदगद होकर रोने लग गए। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन स्तुति करने लगे, हे प्रभु आप सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए आपको महादेव कहते हैं, सबके आश्रय हैं, सबको शांति देने वाले हैं, इसीलिए आपको शंकर कहते हैं, आप दक्ष यज्ञ के विध्वंसक हैं, आपके ललाट में तीसरा एक नेत्र है, आप सूर्य स्वरूप हैं, मैं आपको पहचान नहीं पाया प्रभु, मैंने आपके सामने शस्त्र चलाए, मैं अपने आप में बहुत लज्जित हो गया हूं, हे प्रभु मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, मुझे आप क्षमा कीजिए, मुझे मालूम नहीं था, मैंने आपको कोरा भील समझा, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं आपके शरणागत हूं। इतनी बात सुनकर अर्जुन बहुत रोने लगे। भगवान ने हंसकर अर्जुन का हाथ पकड़ा, छाती से लगाया और अर्जुन को कहा, अर्जुन मैं सब खेल करने के लिए तुम्हारे पास आया था, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम नारायण के नित्य सहचर नर हो, तुम्हारे तेज के आधार पर जगत टिका हुआ है, इंद्र के अभिषेक के समय तुमने और कृष्ण ने धनुष उठाकर दानवों के नाश की प्रतिज्ञा की थी, आज मैंने माया से भील का रूप धारण कर तुम्हारे अनुरूप गांडीव धनुष और अक्षय तर्कस को छीन लिया, अब तुम उन्हें वापिस ले लो, देखो तुम्हारा शरीर एकदम निरोग रहेगा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे शरीर पर किसी भी अस्त्र का प्रभाव नहीं होगा क्योंकि तुमने मेरा आलिंगन प्राप्त कर लिया है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान यदि आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं तो आपके पास सुना है पाशुपतास्त्र है, वह ब्रह्मास्त्र से भी बढ़कर है, उस अस्त्र से मैं भावी युद्ध में सबको जीत सकूं, ऐसी आप कृपा कीजिए, मैं उस अस्त्र से रणभूमि में दानव राक्षस भूत प्रेत पिशाच गंधर्व सर्पों को भी भस्म कर डालूं, मैं जानता हूं कि मंत्र पढ़कर छोड़ने से पाशुपतास्त्र में से हजारों त्रिशूल हजारों गदाएं और हजारों हजारों सर्पाकार बाण निकलते हैं, मैं उस पाशुपतास्त्र से भीष्म द्रोण कृपाचार्य कटुवादी कर्ण के साथ लड़ सकूं, इसलिए मैं आपसे मांगता हूं। शंकर ने कहा, वत्स अर्जुन तुम बड़े समर्थ हो, तुम्हें मैं अपना प्यारा पाशुपतास्त्र प्रदान करता हूं, क्योंकि तुम इसके योग्य हो और इसके उपसंहार के भी अधिकारी हो। यम, इंद्र, कुबेर, वरुण और वायु भी इस अस्त्र को धारण और प्रयोग और उपसंहार में कुशल नहीं है। फिर मनुष्य तो भला जान ही कैसे सकता है। मैं तुम्हें अस्त्र देता हूं, परंतु परंतु क्या महाराज? तुम इसे किसी के ऊपर सहसा मत छोड़ देना। एक तुम सहसा बिना विचारे छोड़ दोगे, यह तुम्हारी बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। अल्प शक्ति मनुष्य के ऊपर प्रयोग करने पर यह सारे जगत का नाश कर डालेगा। यदि संकल्प, वाणी, धनुष अथवा दृष्टि से किसी भी प्रकार शत्रु पर इसका प्रयोग हो तो इसका तब वह इसका नाश कर डालता है। अर्जुन स्नान और के साथ पवित्र होकर भगवान शंकर के पास आए और कहने लगे, अब मुझे पाशुपतास्त्र दीजिए। भगवान महादेव ने अर्जुन को प्रयोग से लेकर उपसंहार तक सब प्रकार का रहस्य समझा दिया। अर्जुन ने उसे ग्रहण कर लिया। उस समय सारी पृथ्वी, नगर, समुद्र, नगर, गांव, खाने, पर्वत सब डगमगाने लगे। भगवान शंकर ने आज्ञा दी, अर्जुन देखो पाशुपतास्त्र का प्रयोग, अब तुम स्वर्ग में जाओ। अर्जुन ने भगवान शंकर को प्रणाम किया, हाथ जोड़े चरणों में, फिर उन्होंने अपना शीश नवाया। भगवान शंकर ने गांडीव धनुष अपने हाथ से उठाकर अर्जुन को दिया और देखते देखते भगवान शंकर आकाश मार्ग से चले गए। अर्जुन की मानसिक स्थिति बड़ी विलक्षण हो रही थी। देखो आज मुझे भगवान शंकर के दर्शन हो गए, उन्होंने मेरे शरीर पर अपना वरद हस्त रखा, मैं धन्य हो गया। वो ऐसा सोच ही रहे थे कि उनके सामने वैदुरी मणि के समान कांतिमान जलचरों से घिरे जलाधीश वरुण, सुवर्ण के समान चमकने वाले धनाधीश कुबेर, सूर्य के पुत्र यमराज, बहुत से गुह्यक गंधर्व मंदराचल के तेजस्वी शिखर पर आकर उतर गए। कुछ ही क्षण बाद देवराज इंद्र भी इंद्राणी के साथ ऐरावत पर चढ़कर देवगणों सहित मंदराचल पर आए। सब देवताओं के आ जाने पर धर्म के मर्मज्ञ यमराज ने मधुर वाणी से कहा, अर्जुन देखो सब लोकपाल तुम्हारे पास आए हैं, आज तुम हम लोगों के दर्शन के अधिकारी हो गए, इसलिए दिव्य दृष्टि लो, हमारा दर्शन करो। तुम सनातन ऋषि नर हो, तुमने मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण किया है, अब तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर पृथ्वी का भार मिटाओ। मैं तुम्हें अपना वो दंड देता हूं जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता। अर्जुन ने स्वीकार किया, मंत्र पूजा का विधान और उपसंहार की विधि सीख ली। वरुण ने कहा, अर्जुन मेरी ओर भी देखो, मैं जलाधीश वरुण हूं, मेरा वारुण पास युद्ध में कभी निष्फल नहीं होता, तुम इसे ग्रहण करो और छोड़ने लौटाने की गुप्त विधि भी सीख लो। तारकासुर के घोर संग्राम में इसी पास से मैंने हजारों दैत्यों को पकड़कर कैद कर लिया था, तुम इसके द्वारा चाहे जिसको कैद कर सकते हो। धनाधीश कुबेर ने कहा, अर्जुन तुम भगवान के नर रूप हो, पहले कल्प में तुमने हमारे साथ बड़ा परिश्रम किया, मैं तुमको एक अंतर्धान नामक अनुपम अस्त्र देता हूं, इसे तुम स्वीकार करो, इससे शत्रु सोए से होकर नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर को नष्ट करते समय इसी का ही प्रयोग किया था, यह मैं तुम्हें देता हूं। अर्जुन ने स्वीकार किया और इंद्र ने गंभीर वाणी से कहा, वत्स अर्जुन तुम भगवान के नर रूप हो, तुम परम सिद्धि देवताओं की परम गति को प्राप्त हो गए हो, तुम्हें देवताओं के बड़े बड़े काम करने हैं, स्वर्ग में भी चलना है, इसके लिए तुम तैयार हो जाओ, मातली सारथी तुम्हारे लिए रथ लेकर आएगा, उसी समय मैं तुम्हें स्वर्ग में ही दिव्य अस्त्र प्रदान करूंगा। इस प्रकार सभी लोकपालों ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दिए, वरदान दिए और अर्जुन ने सबकी स्तुति की, सबसे शस्त्र दान लिया और उसके बाद देवता अपने अपने धाम में चले गए और इंद्र वहां अर्जुन इंद्रलीक पर्वत पर अब आगे देवराज इंद्र के रथ की प्रतीक्षा करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण